بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین، السلام علیکم. فضلت رسول جواد الائمہ حضرت محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کا آج یوم ولادت باسعادت ہے. اس پر مسرت موقع پر آپ سب کی خدمت میں دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں انتخابات کے بعد حکومت سازی کا عمل اور آنے والی حکومت کو درپیش مسائل اور مشکلات. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین، 11 مئی کو انتخابات ہوئے، نتائج کا اعلان بھی ہو چکا اور اب رفتہ رفتہ جیتنے والی جماعت ایوان اقتدار کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس سلسلے میں آئندہ چند دنوں میں حکومت سازی کا عمل مکمل ہو جائے گا اور وفاق سمیت صوبوں میں حکومتیں اور اراکین نے حکومت اپنے اپنے عہدوں کا حلف بھی اٹھا لیں گے. مگر جیسا کہ خود نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کے جیتے ہوئے امیدواروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ 5 سال نون لیگ کے لیے امتحان کا سال ہوگا اور 5 سال نون لیگ کو امتحانات سے گزرنا پڑے گا، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے حقیقت بیانی سے کام لیا ہے. حکومت بنا لینا آسان کام ہے، لیکن درپیش مسائل اور چیلنجوں سے نمٹنا بہت ہی سخت، اور وہ بھی ایک ایسے موقع پر، ایک ایسے ماحول میں جہاں دہشت گردی کا عفریت پوری قوت کے ساتھ اپنا سر اٹھائے ہوئے ہے اور جس نے پاکستان کی معیشت کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اور سرمایہ کاری اور سرمایہ کار ملک سے فرار ہو چکے ہیں. بہرحال نواز شریف صاحب نے بڑے ہی ہمت اور حوصلے کے ساتھ یہ بیان دیا ہے اور بہت ہی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنی کارکردگی دکھانے کا عوام سے اور پارٹی کارکنوں سے وعدہ کیا ہے. یہ سب آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہاں پر ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر اپنے معزز مہمانوں سے گفتگو کریں گے.
پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر تیزی سے تغیرات رونما ہو رہے ہیں. مسلم لیگ نون حکومت سازی کی ضروری تیاریاں کر رہی ہے. دریاسنا اطلاعات ہیں کہ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں بجٹ کی تیاری اور معیشت کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تجاویز پر غور کیا گیا. پارٹی رہنماؤں سمیت سابق وزراء خزانہ اور ماہرین معیشت اجلاس میں شریک تھے. دوسری جانب پاکستانی میڈیا کے مطابق پنجاب اسمبلی کا اجلاس 29 مئی کو طلب کر لیا گیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اجلاس میں 9 منتخب اراکین پنجاب اسمبلی حلف اٹھائیں گے. ادھر تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی حالت میں بہتری آئی ہے اور اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے چلنا پھرنا شروع کر دیا ہے. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان کی صحت تیزی سے بہتر ہو رہی ہے اور انہیں بدھ کی شام تک اسپتال سے ڈسچارج کیے جانے کا امکان ہے. تحریک انصاف پارٹی کے رہنما عمران خان نے مسلم لیگ نون کے خلاف دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے. دریاسنا تحریک انصاف پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان تحریک انصاف پارٹی کی اہم رہنما زہرا شاہد کے قتل کے تعلق سے الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری ہے. ادھر انتخابات میں شکست سے دوچار ہونے والی جماعتیں اپنی کارکردگی کی خامیوں کی نشاندہی کی کوششوں میں مصروف ہیں. بلاول ہاؤس بحریہ ٹاؤن لاہور میں 19 اور 20 مئی کی درمیانی رات سیفما کے عہدیداروں سے پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کی آف دی ریکارڈ ملاقات ہوئی، جس میں صدر پاکستان نے اقتدار کی منتقلی اور انتخابات میں اپنی پارٹی کی کارکردگی کے حوالے سے کچھ نکات بیان کیے. آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ وہ صدر پاکستان کی حیثیت سے اس عہدہ جلیلہ کی دستوری عمر پوری کریں گے. قومی سیاسی جمہوری اقتدار کی خوشگوار منتقلی میں کسی رکاوٹ کا اندیشہ نہیں ہے. سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی پارٹی تنے تنہا یا किसी सियासी पार्टी की कोलिशन से हुकूमत बनाएगी, दूसरे नंबर पर आने वाली पार्टी से कायदे हिजबे इख्तलाफ लिया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी के तीनों बच्चे बिलावल, बख्तावर और आसिफा कौमी सियासत में हिस्सा लेंगे। सदर जरदारी का कहना था कि PPP को तवक्को से 40-50 कम नशिस्तें मिली हैं, जिसकी एक अहम वजह लोड शेडिंग थी। अपनी जिंदगी की आखिरी इंतखाबी मुहिम में बेनजीर भुट्टो ने अपनी जान की कुर्बानी देकर पार्टी को सिर्फ 26-27 नशिस्तें ज्यादा दिलवाई, मगर ये सौदा बहुत महंगा था। सदर जरदारी का कहना था कि वो अपने सदारती ओहदे से इस्तीफा देकर पार्टी की इंतखाबी मुहिम चला सकते थे, लेकिन इससे पार्टी को सिर्फ 26-27 नशिस्तों का ही फायदा हो सकता था। सदर जरदारी का कहना था कि तालिबान की धमकियों का भी PPP की कमजोर कारकर्दगी पर खासा असर रहा है। इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाली पार्टियों के जश्न और शिकस्त खाने वाली पार्टियों के जायजा इजलासों का सिलसिला चलता रहेगा। ताहम सबसे अहम मरहला मुल्क को चलाने और मौजूदा बहरान से बाहर निकालने का है, और इसकी जिम्मेदारी इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर है। ये बात खुशाइंद है कि पार्टी इकतसादी माहरीन से मुशावरत कर रही है और इसे अच्छी शुरुआत करार दिया जा सकता है। मियां नवाज शरीफ और उनकी पार्टी मुस्लिम लीग नून के ताल्लुक से तजिया निगारों के हल्के में एक तशवीश ये पाई जाती है कि फौज के साथ उनके ताल्लुक खुशगवार नहीं रहे हैं और खारजा पॉलिसी की सतह पर अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुक से उनके फैसले फौज के बाज तहफात के खिलाफ थे, जिसके नतीजे में कशीदगी और टकराव की कैफियत पैदा हुई और 1999 में उनकी हुकूमत का खात्मा हो गया। ताहम इस दफा फौज के सरबराह की मियां नवाज शरीफ से खास अंदाज में मुलाकात से अच्छा इंदिया मिला है। पाकिस्तान के बाज तजिया निगारों का कहना है कि वजीर आजम का हलफ उठाने से कबल ही जनरल कियानी का बगैर कानवाई के मॉडल टाउन लाहौर जाना, मियाँ साहब को ब्रीफिंग देना और DGISI जनरल जहीरुल इस्लाम की तरफ से ब्रीफिंग देने की ख्वाहिश जाहिर करना अहम पेशरफ्त है। जनरल कियानी ने हिंदुस्तान के सिलसिले में फौज का मौकिफ बयान कर दिया है कि बहुत एहतियात के साथ पेशकदमी की जाए। अब देखना यह है कि मियां नवाज शरीफ फौज के साथ मामलात को आगे बढ़ाने के ताल्लुक से किस तरह की पॉलिसी अख्तियार करते हैं। पाकिस्तान के तजिया निगारों का कहना है कि मियां नवाज शरीफ को चाहिए कि सिविलियन क्यादत, अहलियत, काबिलियत और बेहतर नतायज के जरिए फौज को उसके आईनी रोल तक महदूद करने की पॉलिसी अपनाए। इस सिलसिले में एक अहम मामला जनरल परवेज मुशर्रफ का है, जो मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रहे हैं। ताहम बेनजीर कत्ल केस में उन्हें जमानत मिल जाने के बारे में कहा जा रहा है कि किसी दोस्त मुल्क की वसादत से मामले को रफा दफा कराने और जनरल मुशर्रफ को महफूज राहदारी देने की कोशिश बार-बार हुई है। ये मसला भी बहुत अहम है कि नवाज शरीफ इस सिलसिले में क्या मौकिफ अख्तियार करते हैं।
जी नाज़रीन, आपने हमारे साथियों की तैयार करदा रिपोर्ट मुलाहज़ा फरमाई। अब सीधे चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर और सरकर्दा और मारूफ तर्ज निगार जनाब उमर रियाज अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
सलाम
उमर रियाज अब्बासी साहब, मैं इतनी देर से ये सोचा था कि गुफ्तगू शुरू कहाँ से की जाए। बहरहाल गुफ्तगू से शुरू करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने अपने पहले खिताब में, जो उन्होंने मेंबरान असेंबली जो नून लीग के थे उनके अजलास से खिताब किया, उन्होंने कहा है कि हम महीनों का काम दिनों में अंजाम देंगे और महीनों और सालों का काम महीनों में अंजाम देंगे। मौजूदा सूरत हाल में जब नवाज शरीफ साहब खुद इसका एतराफ़ कर चुके हैं कि ख़जाना खाली हो चुका है, हम कर्ज उतारें या बिजली, तो ऐसे में महीनों का काम दिनों में और सालों का काम महीनों में वो कैसे कर सकेंगे आपके ख्याल में?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा खूबसूरत सवाल है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा काम उन्होंने सालों वाला महीनों में करना है या महीनों वाला काम दिनों में। ये वो शख्स करता है जिसे जल्दी होती है, बहुत जल्दी में होता है, उजलत में होता है या कहीं किसी मंजिल पे पहुंचना होता है। मियाँ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ये इस बात की गवाही देता है कि पहले भी वो दो दो साल में जो जल्दी के काम थे वो निपटा के वापस चलते बने। मुझे एक चीज़ बड़ी वाजे है कि इनके भाई हैं मियाँ शहबाज शरीफ। उन्होंने गुज़श्ता जो इंतखाबी मुहिम थी उसमें जब आवाम से मुखातिब होते तो उन्होंने बारहा ये बयानात बदले। पहले उन्होंने कहा कि मैं इक्तदार में आकर लोड शेडिंग 6 माह में ख़त्म करूँगा। दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने फैसलाबाद के जलसे में दिया कि मैं इक्तदार में नून लीग आई तो हम 1.5 साल में लोड शेडिंग का बहरान ख़त्म करेंगे। तीसरा बयान उन्होंने कोटली सतिया मरी के मकाम पर दिया कि हम इक्तदार में आए तो 2 साल में बहरान ख़त्म करेंगे, और बहरान ख़त्म ना किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। प्रॉब्लम यह है कि लोगों को अब नाम से नहीं है कि आपका नाम वही रहेगा या नहीं, आप कहते हैं मैं रिज़ाइन करूँगा। अब उन्हीं के भाई मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो जोश खिताबत में ऐसी बातें कह देते हैं और इंसान से निकल जाती हैं। अगर कोई बच्चा किसी गलती से कोई काम कर जाए या कोई नाअहल रेड़ी बांध कोई ऐसी बात कह दे तो हम कहें जोश खिताबत में या नाअहली में उसका सब्जेक्ट नहीं है। जिन लोगों ने वीएन देना होता है, जो लीडर्स होते हैं जिन्होंने क्राइसिस से निमटना होता है, वो जोश के साथ होश से भी काम लेते हैं। पाकिस्तानी कौम ने इस दफ़ा अगर 50% लोगों ने वोट डाला है तो वो मेरे ख्याल में पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी से इतने तंग थे कि तब्दीली की वेव के नारे पे आपने देखा कि 76 से 80 लाख वोट पड़े हैं इमरान खान को, और इसी तरह जो है वो मियां साहब को 1 करोड़ 58 लाख वोट पड़े। तो लोग चैन चाहते हैं और इनका भी वही हाल होगा अगर इन्होंने क्राइसिस पे काबू ना पाया जो बाकी गवर्नमेंट्स का हुआ है। जहाँ तक मियाँ साहब का ये कहना है, आपने अपनी तमहीदी गुफ्तगू में भी कहा कि कौम को लारा नहीं लगाया, बल्कि ये कहा 5 शोरब ज़रूरत हैं हमें एनर्जी क्राइसिस से निमटने के लिए, ख़जाना खाली है। तो मैं एक मासूमाना सा सवाल अगर करूँ यहाँ पाकिस्तान के अवाम की तरफ से, वो सवाल ये है कि जनाबे वाला ये जितनी भी जमातें हैं जो इलेक्शन में गई हैं, ये अरबों और खरबों रुपए के इश्तहारात टीवी चैनल्स पे चलाती रहीं, अखबारात पे कंपेन करती रहीं, इनकी पब्लिसिटी पैनाफ्लैक्स बैनर्स होल्डिंग्स और इनके पार्टी दफातर के कॉर्नर मीटिंग्स के ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात वो खरबों में, तो जो अपने इंतखाबी मुहिम पे मियाँ साहब इतना लगाते रहें तो वो जब आवाम को रिलीफ देने की बारी आती है तो ख़जाना खाली होने का रोना क्यों रोते हैं? पाकिस्तानी आवाम अब मैच्योर होती जा रही है, यहाँ के मैसेज जो हैं टैलेंटेड ब्रांड जो है उसमें एक अवेयरनेस और एक तब्दीली की फिजा पैदा हो चुकी है। तो उन जैसे मियाँ साहब के लीडर को 90 की दिहाई वाला ये बयान नहीं देना चाहिए, ये अब 93 या 99 वाला पाकिस्तान नहीं है, 2013 वाला पाकिस्तान है, 9/11 के बाद वाला पाकिस्तान है, टेररिज्म वाला पाकिस्तान है, एनर्जी क्राइसिस वाला पाकिस्तान है। इसमें बड़ा स्ट्रांग मीडिया है और क्रिटिक्स रखने वाले बड़े एनालिस्ट हैं और यहाँ पे पूरी दुनिया की निगाहें हैं, जियोग्राफिकल जो पोजीशन है पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाक ईरान गैस पाइपलाइन है, गवादर को चाइना के हवाले करना है, डोमेस्टिक इश्यूज हैं और इंटरनेशनल जो है वो आपके खारजा पॉलिसी है उसकी रिकंस्ट्रक्शन है, ड्रोन हमले हैं, ये सारी चीज़ें, इनमें से किसी पे मियां साहब ने बात नहीं की। तो लीडर जो है वो नेशन बिल्डिंग की बात करता है, क्राइसिस से निमटने की बात करता है, लेकिन अफसोस के पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जब इक्तदार का हुमा इनके सर पर आके बैठता है तो ये बजाय कौम को एक वीएन देने के, बजाय कौम को ये इंजेक्ट करने के कि हाँ हम कर सकते हैं इंशाल्लाह हम करेंगे और बैसाखियों का सहारा लिए बगैर करेंगे, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को बगैर किसी डिक्टेशन के वाशिंगटन के निर्गे से निकालेंगे, ऐसी बातें करते लोग उनका साथ देते, ओवरसीज पाकिस्तानी शायद सोचते कि हम पैसा भेजें। तो ये रिहर्सल मियाँ साहब पहले भी की, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, ना कर्ज उतरा ना मुल्क संवरा। तो अब भी मियाँ साहब का ये कहना कि एनर्जी क्राइसिस 2 साल में जो है वो ठीक नहीं हो सकता, आज इस्लामाबाद के हल्कों में लोगों के जहनों में 6 मगोइयाँ हैं कि अगर ये शख्स आ गया जिससे हम कह रहे थे कि इतने अरसे बाद आया है, कोई तब्दीली आएगी, क्राइसिस पे काबू पाएगा, इन्वेस्टर फ्रेंडली शख्स है, तो अगर ये ऐसी बातें कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में कौम जो है उसने फिर एक दफा सोचने शुरू कर दिया है कि कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ 5 साल वही लाशें उठाने वाला चक्कर, लोड शेडिंग वाला चक्कर, हाथ में पंखी लेके झूलने वाला चक्कर, इस कौम के साथ वही धन धौंस और धांधली वाला चक्कर चलता रहे। तो इसमें मेरे ख्याल में 50% जो वोटर्स हैं जिन्होंने हक राय दे इस्तेमाल नहीं किया वो शुक्र अदा करते हैं कि हम इस गुनाह के अंदर शरीक नहीं थे, इसलिए कि मियाँ साहब का जेस्चर वही है। हाँ, आर्मी चीफ के हवाले से जो उनकी मुलाकात है वो एक फ्रेंडली माहौल में हुई, इसलिए कि आर्मी चीफ ने मेरे ख्याल में बाज़ ज़राए कहते हैं इन्हें कहा था 10 बजे आप स्पीच कर दें, अभी 80% रिजल्ट आया ही नहीं है, मियाँ साहब ने कहा प्राइम मिनिस्टर हूं, उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पे अमले पे एक प्रेशर बढ़ा और एक मोमेंटम बनाया गया। तो ये गवर्नमेंट मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया, अमेरिका और वेस्टर्न लॉबी के इशारे पे, हमारे डोमेस्टिक लोग भी उसमें शामिल थे, मियां साहब की गवर्नमेंट लाई गई ताकि तालिबान फ्रेंडली गवर्नमेंट हो, और अफगानिस्तान से अमरीका ने 2014 में जाना है तो मियाँ साहब तालिबान को मुदाकरात की मेज पर लाएं, उलझाए रखें और अमेरिका को सेफ पैसेज मिल जाए। इससे ज्यादा पाकिस्तानी आवाम के लिए इस गवर्नमेंट का मेरे ख्याल में ताहाल कोई फायदा नजर नहीं आता।
बहुत शुक्रिया। मैं फिर आज उनका चलते हैं लंदन स्टूडियो जहां पर मौजूद हैं बरसगीर के और आलमी उमूर के माहिर मुमताज दानिश्वर मंजूर रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब मंजूर साहब।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
मंजूर साहब, आप क्या कहेंगे, खजाना खाली हो चुका, कर्ज उतारें या बिजली ठीक करें, यह सवाल है नवाज शरीफ साहब का, वो इसका जवाब किस तरह से देंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज ये है कि ये बिल्कुल इंतखाबात का रिजल्ट जो था, नताज जो थे, सबके लिए गैर मुतवक्का थे और कोई शख्स भी इस तरह ये नहीं समझ रहा था कि वो इन तमाम जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो सकेगा। सबसे ज़्यादा जो अजनबीयत और सबसे ज़्यादा तो जो हैरानी और परेशानी हुई ज़ाहर इमरान ख़ान साहब को हुई, क्योंकि वो उससे ज़्यादा का तवक्को कर रहे थे। अब चूंकि ये सारा बोझ जो है नवाशी के कंधों पे आ गया है, या मुसल्लत किया गया है, या ये कि उनको चुन लिया गया था इस मकसद के लिए कि ताकि कम से कम इंतशार पैदा हो, और जिस तरह हुकूमत के बैनुल अक्वामी तकाजे थे ज़रूरियात के मुताबिक हुकूमत बनाई जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब जितने लोगों को वादे कर रहे थे लोगों से, और जिस तरह के सब्ज़ बागात दिखा रहे थे, उन्हें यकीनन इस बात का इल्म था कि खजाने की क्या कैफियत है। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जब 200 पिछले इंतखाबात में 209 में जब हुकूमत बनी थी, तो इसहाक डार साहब उस वक्त भी वजारे खजाना संभाल चुके थे और वो बजट पर काम कर रहे थे, जबकि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी के लोग भी हिस्सेदार थे और इनके काफ़ी सारे काबीना के अरकान थे। उस वक्त भी ये बार बार इसहाक डार की तरफ से और दूसरे नवाज लीग के लोगों की तरफ से कहा गया कि खजाना बिल्कुल खाली हो चुका है और हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान की जरूरियात को पूरा किया जा सके। तो अब वही कैफियत इलेक्शन जीतते ही, इंतखाबात के नतायज आते ही फिर कहना शुरू कर देंगे कि खजाना खाली हो चुका है, हमारे लिए बड़ा सख्त वक्त है। तो ये तमाम उमूर जो है इस बात की पेशकदमी है और पेशबंदी है कि अगर ये नवाज शरीफ की हुकूमत अपने तमाम वादों को पूरा नहीं कर सकती, और जाहिर है कि कर सकेगी, तो इसलिए वो पेशबंदी की जा रही है ताकि लोगों के सामने ये बात बहाना बनाकर रख दी जाए कि जब हमने हुकूमत संभाली थी खजाना बिल्कुल खाली था, और ये पीपल्स पार्टी वाले बकौल उनके जो चोर थे, ये डाकू थे, ये लुटेरे थे, ये सबको पाकिस्तान को लूट लाट कर और इसका खजाना बिल्कुल करके जा चुके थे। तो मुश्किलात तो यकीनन हैं, इसमें कोई शुबा की गुंजाइश नहीं, लेकिन कहने का मकसद ये है, मैं ये समझता हूं कि अगर ये लोग इखलास के साथ और पूरी तरह दिलजमी के साथ और खुद अपने आप का दामन बचाकर रिश्वतों से, करप्शन से, माल के ज़िया से, अकलमंदी से काम लेकर अगर ये चाहें, ठीक है भले कुछ वक्त लगेगा, अरसा लगेगा, लेकिन फिर भी मुल्क की हालत को कम अज़ कम इससे ज़्यादा बिगड़ने से रोका जा सकता है। इससे अगर ये हुकूमत मजीद हालात को बिगाड़ने से रोक सके तो ये भी इसकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी,
बहुत शुक्रिया
और
आपका
अगर ये भी नहीं कर सकेगी।
जी, बहुत शुक्रिया। मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। अब्बासी साहब, सदर जरदारी साहब ने लाहौर में अपने एक खिताब में कहा कि इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कौमी और आलमी इदारों की साजिश का शिकार हुई है। मैंने सवाल इसलिए किया कि अभी आपने अपने गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ साहब को बाज़ क़ुतों की तरफ से लाया गया है इकतदार में, तो चूँकि आपकी गुफ्तगू का ये जुमला था, तो इसी से मिलता जुलता खिताब इनका भी, यानी सदर जरदारी के इंतखाबात में कौमी और आलमी इदारों की साजिश का शिकार हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो कौमी और आलमी इदारे कौन से हो सकते हैं, और क्यों साजिश की पीपल्स पार्टी के खिलाफ या सिलसिले में?
देखिए, पीपल्स पार्टी के खिलाफ दो हिस्से हैं सवाल के, कौमी और आलमी इदारे। कौमी इदारे उसमें एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी है जो हमेशा से एंटी पीपल्स पार्टी रही है, ये तो पाकिस्तान का थीसिस बताता है आपको। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स जानते हैं कि पीपल्स पार्टी के हमेशा एंटी रही है एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट स्पेशली। चूंकि जनरल जियाउल हक ने जब असैसिनेट किया जुल्फकार अली भुट्टो को, जब वो शहीद हुए, फांसी पर लटकाया गया, तो उस वक्त से जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशों के जाल बुने, और ये एक तवातुर है हिस्ट्री का। मैं आपको बताऊं, 90 में जब इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, उसमें 9 सितारे थे जिसमें रिलीजियस पार्टीज थी और राइट विंग की जितनी रिलीजियस फोर्सेज थी वो इकट्ठी थी PMLN के साथ। तो आज 13 से 15 साल के बाद जब वो असगर खान केस खुला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो उसमें पता चला इंटेलिजेंस के जो साबिक ऑफिसर्स थे, जनरल दुरानी, जनरल तलत मसूद, उन्होंने एफिडेविट दिया, उन्होंने कहा जी हमने पैसा बांटा है, जमात इस्लामी को पैसा मिला, नून लीग को मिला, दीगर पार्टीज को, जितोई साहब को, पीपल्स पार्टी को हराने के लिए। तो उस वक्त जो है वो ये सिलसिला अपनाया गया, बाद में पता चला 1 सितारे की कीमत कितनी थी। तो ये तो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट रोल पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो तारीख बताती है। इस गवर्नमेंट में मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने बड़े अच्छे पत्ते खेले थे और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, ब्यूरोक्रेसी को किसी हद तक अपना गर्विदा कर लिया था और 5 साल उन्होंने बड़ी दानिशमंदी से और सियासी बसीरत से पूरे किए हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंटरनली बड़ी साजिशें हुई हैं, गिलानी साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो है वो निर्गे में आए, इनके बहुत सारे और मिनिस्टर्स और बहुत सारे केसेस थे, लेकिन इसके बावजूद प्रेसिडेंट साहब ने रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिसी को अपनाया। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है आलमी ताकतें। देखिए आलमी ताकतें हमेशा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो पीपल्स पार्टी चूंकि आपको पता है पाकिस्तान के मैसेज की बात करती है और इसके कायद थे जुल्फकार अली भुट्टो, आपको याद होगा यूएनओ में उन्होंने पेपर फाड़ दिया था और उन्होंने कहा था व्हाई शुड आई वेस्ट माई टाइम इन यूनाइटेड नेशंस व्हेन दे आर नॉट गोइंग टू कंसीडर कश्मीर इशू, कि जब कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन कंसीडर नहीं करती तो मैं अपना टाइम यूएनओ में वेस्ट क्यों करूं। तो हेनरी किसिंजर ने आपको धमकी दी थी कि मैं तुम्हारा इब्नतराक अंजाम करूंगा। तो भुट्टो एंटी अमेरिकन थे और उनकी जो लेगेसी है भुट्टो की जो पार्टी की, ये भी मेरे ख्याल में वो आवाम के अंदर उतनी मकबूल है। भुट्टो साहब की वो स्पीचेज इंतखाबात में चलती रही जो यूएनओ में थी और पाकिस्तान के मैसेज के हुकूक की बात होती रही। तो ये सऊदी अरेबिया पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को लाइक नहीं करता, इसी तरह कुछ आलमी ताकतें हैं। तो नवाज शरीफ साहब चूंकि गुड बुक्स में हैं, यूरोपीय यूनियन के भी लंदन में क्याम पजीर रहे, वहाँ पर उनकी FBI और दीगर जो इदारे हैं उनकी गुड बुक्स में हैं, इसी तरह शाही मोहल्लात हैं जद्दा में वहाँ उनकी गुड बुक में हैं, शाह अब्दुल्ला के बड़े करीबी साथियों में इनका शुमार होता है। और आपको याद होगा मैं ऑफ द रिकॉर्ड एक बात कह दूं कि पाकिस्तान के कुछ अस्करी हलके और प्रेसिडेंट मुशर्रफ और नवाज शरीफ साहब ये जद्दा में शाह अब्दुल्ला ने मुलाकात करवाई और डील करवाई। आपको मैं एक ब्रेकिंग न्यूज देता जाऊं, आज आपके प्रोग्राम की वसादत से ये नोट कर लें, जनरल मुशर्रफ को सेफ पैसेज मिल चुका है, बस उस पर अमल दरामद होना बाकी है। नवाज शरीफ साहब आज तक एक जुमला मुशर्रफ के खिलाफ नहीं बोला, इसलिए कि शाह अब्दुल्ला ने मना किया था। तो ग्रेटर गेम है डील में, इसमें CIA भी इन्वॉल्व है, इसमें अमेरिकन इंटेलिजेंस और अमेरिकन थिंक टैंक्स भी इन्वॉल्व हैं कि हमने 2014 में अफगानिस्तान से निकलना है, लिहाजा तालिबान फ्रेंडली गवर्नमेंट आए। और अगर इमरान खान आ जाता तो वो ड्रोन गिराने की बात कर रहा था, वो एंटी अमेरिकन पॉलिसीज जो है उनको लाने की बात कर रहा था, अमेरिका का जो स्टेटस है पाकिस्तान में हमारी सॉवरेनिटी में मुदाखलत करना, खत्म करना अमेरिकनिज्म, तो उससे वेस्ट को अमेरिका को बड़ी तशवीश लाक हुई। इसीलिए उन्होंने अभी इलेक्शन के नतज ही नहीं आए तो यूरोपीय यूनियन ने कह दिया पाकिस्तान में बड़े साफ शफाफ इलेक्शन हुए। ओबामा आज तक आपने इतना जल्दी स्टेटमेंट नहीं दिया, अभी अंडा बाहर ही, अंडे से बच्चा बाहर ही नहीं आया, आधा अंदर है, पता नहीं है भी या नहीं, आपने कह दिया हाँ ठीक है हो गया। तो ये सारी ग्रेटर गेम है और अल्लाह करे पाकिस्तानी कौम के साथ कोई हाथ ना हो। आप देखिएगा ड्रोन अटैक भी नहीं रुकेंगे, ये तारीख का प्रोग्राम याद कर लें, एनर्जी क्राइसिस भी नहीं खत्म होगा और मियां साहब को तालिबान के साथ उलझा के सॉफ्ट माहौल पैदा करके अमेरिका तो निकल जाएगा लेकिन तालिबान इस आवाम के गले पड़ेंगे, हमारी फोर्सेस के गले पड़ेंगे। और हमारे आर्मी चीफ ने जो स्टेटमेंट दिया था कि हमें ईस्टर्न दो ऑप्शन है, हमें इंटरनल थ्रेट पहले है एक्सटर्नल बाद में, तो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट में प्रायोरिटी आर्मी चीफ के नजदीक तालिबान जो है उनकी दखलंदाजी थी। अब देखते हैं कि मियां साहब की प्रायोरिटी क्या है। तो ये ग्रेटर गेम है, इसमें पाकिस्तान का आवाम चंद सेकंड में वोट डालता है लेकिन हुकूमतें हमेशा वाशिंगटन में बलती हैं। जब तक ये गला सड़ा निजाम नहीं बदलता लोग इसी तरह चेहरे बदल बदल के आते रहेंगे और आवाम को गुमराह करते रहेंगे, पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा रहेगा।
मर्यादा बासी साहब, आपने कहा कि इमरान खान ने कहा था कि हम ड्रोन मार गिराएंगे, नवाज शरीफ साहब का भी इंतखाबात से कबल लबुलहजा कुछ ऐसे ही था, उन्होंने सख्त इसकी मुखालफत की थी, तो ये कैसे तस्वीर किया जा सकता है कि वो ड्रोन के ताल्लुक से कोई नरम गोशा अख्तियार कर लेंगे या पसपाई अख्तियार कर लेंगे?
नवाज शरीफ साहब का देखें, इलेक्ट होने के बाद मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूं, अमेरिका हमारा दोस्त मुल्क है और बराबरी की ताल्लुकात पर अमेरिका से हमारी दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करना होगा। और नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट जरा मैं एहतियात से पढ़ूंगा, उन्होंने कहा ड्रोन के मसले पे अमेरिका से बात हो सकती है। अब देख लें आप यहां ये इतना लग जाए, यानी हम इतने अदब आदाब दिखाते हैं जितना अदब आदाब हमें यहां दिखाना चाहिए अपने उमूर बेहतर करने के लिए, वो वाशिंगटन के सामने चूंकि कशकोल लेके जाना है। प्रॉब्लम यह है जद्दा में इनकी फैक्ट्री है, वहां पर लिखा हुआ है नो पाकिस्तानी, कि अपनी फैक्ट्री के अंदर कोई पाकिस्तानी मुलाजम नहीं हो सकता, पैसा इन सब का बाहर है, जायदादें इन सब की बाहर है, मफाद इनका पाकिस्तान में, इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम का खून निचोड़ना है, अमेरिका के कहने पे निचोड़ना है। तो ये सारी ग्रेटर गेम है, मियां साहब उस गेम का हिस्सा बन चुके हैं। मुझे पता है कि रात 12 बजे के बाद जिस तरह मैं ऑफ द रिकॉर्ड कहता हूं, एक इंटेलिजेंस का मेरा दोस्त है वो कहता है कि 3,000 वोट तो मैंने डाले एक उम्मीदवार को,
अब ये अंदाजा लगा लें, मेरे अपने मोहल्ले के अंदर 2200 में वोट खरीदा गया जनाब अली अब्बास साहब, मैं वजू की हालत में हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कॉर्नर मीटिंग किसी शख्स ने करवाई, 2.5 लाख रुपया दिया। तो जहां पर इलेक्शन से पहले अखराजात की ये पोजीशन है, वहां पर साफ शफाफ इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? जिन लोगों ने अरबों करोड़ों रुपया लगाया, आप मुझे बताएं वो मिनिस्टर बनेंगे तो पहले अपना पैसा पूरा करेंगे या आवाम को रिलीफ देंगे? तो ये सारी गेम है आवाम के साथ, एक चक्कर हो रहा है, तो अमेरिका की इन्वेजन के लिए सारी गेम की गई।
अब्बासी साहब, हारने वाली जमातें भी इस बात का तो एतराफ कर रही हैं कि अगरचे बाज़ जगहों पर धांधली हुई है, मसलन इमरान खान साहब ने लाहौर में उनकी जमात ने किया, या कराची या हैदराबाद में बाज़ जमातें मुतालबा कर रही हैं, लेकिन मजमूई तौर पर हारने वाली जमातें भी कह रही हैं कि हम इंतखाबी नतीजे से मुतमईन और इंतखाबात मजमूई तौर पर शफाफ हुए।
देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है, जहां तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, अब उन्हें मजबूरन कहना पड़ा उनका लीडर बेड पे है, उस बेचारे के साथ एक इंसिडेंट हो गया। अगर इमरान खान साहब, कुछ लोग कहते हैं सिंपैथी का वोट पड़ा है, अगर वो आखिरी जलसे 2-3 कर जाते सिचुएशन कुछ और होती। मैं आपको गेम बता देता हूं, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान, सिंध में पीपल्स पार्टी, पंजाब में PMLN, मरकज में PMLN और मखलूत साथ अलायंसेज मिला के, और इसी तरह बलोचिस्तान में मिक्स गवर्नमेंट, कबायलियों को खुश किया हमारी इंटेलिजेंस ने और हमारी जितनी एस्टैब्लिशमेंट है इसने, यानी हौच पौच खिचड़ी बना दी है कि फैसला ये ना कर सकें, फैसला हम करें और फैसला जो अमेरिका सरकार करे। अगर यहां पे स्प्लिट मैंडेट आता है तो पाकिस्तान के कौम के मफाद में नहीं है। हम तो चाह रहे थे कि अगर कोई चेंज ले आए, इमरान खान अगर स्वीप कर रहा था तो एक रात में वो 20,000 की लीड से लाहौर 127 से जीत रहा है, सुबह वो 7,000 से आ रहा है, अकल मानती है? मैं तो नहीं मान सकता। और जहां पे बैलेट पेपर्स दिखाए गए, हमारे मीडिया ने दिखाया जले हुए बैलेट पेपर्स, और यहां पर तो यह भी हुआ है, मुझे दो लोग मिले कहते हैं कि हमारा वोट हमने कास्ट ही नहीं किया, और वहां पे जनाब लिखा हुआ है कि आपका वोट कास्ट हो गया है। तो पाकिस्तान के अंदर धांधली मीडिया ने दिखाई है, बास चैनल्स जो हैं वो बेचारे मजबूर थे, हमारे मीडिया के कुछ लोग भी इस सेटअप के अंदर इन्वॉल्व थे, अगर इन्वॉल्व ना हो तो वो बेचारे, उनका वजूद खतरे में होता है। तो पाकिस्तान में हुकूमतें इंटेलिजेंस बनाती है, अमेरिका की मर्जी से बनती हैं, यहां वजीर आजम सऊदी अरेबिया और अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं आता, मैं चैलेंज करता हूं नहीं आता, कोई तज्जिया निगार मेरे सामने आके बैठ के साबित कर जाए कि अवामी उमंगों का हामिल वजीर आजम और अवामी उमंगों की हामिल हुकूमत बने। पाकिस्तान में वोटर सिर्फ वोट देता है, हुकूमत इंटेलिजेंस बनाती है, फैसले अमेरिका करता है, ये मेरा थीसिस है और ये मेरा नहीं है, हर मुहिब वतन तज्जिया निगार का है जो न्यूट्रल है। लोग सिर्फ चंद सेकंड के लिए वोट डालते हैं, हुकूमतें बनती हैं यहां की एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से, फैसले होते हैं अमेरिका की मर्जी से, यह ट्राई का जब तक खत्म नहीं होता आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता।
जी उमर रियाज अब्बासी साहब, मैं फिर आ जाऊंगा आपकी खिदमत में, इस वक्त लाहौर से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर सहाफी और तर्ज निगार जनाब इशाद आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी।
जी इशाद आरिफ साहब, आप इस वक्त सियासत के मरकज में बैठे हुए हैं, यानी लाहौर में गालिबन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अवामी तवक्कोआत पर नवाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत पूरा उतरने के लिए कमर बस्ता हैं, कितनी तवक्कोआत हैं आप जैसे तजर्बा कार साफियों को कि वो अपनी तवक्कोआत पर और वादे जो उन्होंने किए अवाम से उसको वो पूरा कर सकेंगे और आम की तवक्कोआत पर उतर सकेंगे?
देखिए मियां नवाज शरीफ साहब को जो मैंडेट मिला है उसमें थोड़ी सी मेघनियाँ डाल दी गई हैं, अगर 20-25 नशिस्तें धांधली की नज़र ना होती तब भी वो अक्सरियत में थे और अक्सरियत के साथ वो हुकूमत बना रहे थे, यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो फिर भी वही थी, लेकिन ये जो धांधली हुई है उसकी वजह से उनका मैंडेट थोड़ा सा गहना गया है। इसके बावजूद एक मुचियोर सियासतदान है, उनके पास एक्सपीरियंस है और उन्हें चार बड़े मसाइल का इस वक्त सामना है। सबसे बहुत बड़ा मसला जो है वो है दहशतगर्दी का, और वो रिलेटेड है अमेरिका से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान की जो तालिबान पॉलिसी है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब TTP के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ करते हैं और ड्रोन हमले बंद हो जाते हैं, TTP भी अगर सीज फायर करती है और पाकिस्तान की फ़ौज जिन इलाकों में ऑपरेशन कर रही है वो भी आर्जी तौर पर रोक दिए जाते हैं, मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ये मसला हल होने की उम्मीद है, लेकिन खदशा यही है कि ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर TTP सेज़ फायर कर दे, फौज भी अपने ऑपरेशन रोक दे, तो अमेरिका की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वो इस मौके पर एक ड्रोन हमला करके सारे मुज़ाकरात के अमल को ख़त्म कर दे। एक बड़ा इशू ये है। दूसरा इशू है लोड शेडिंग का, जो इस वक्त 16 घंटे 18 घंटे तक चली गई है। तवक्को ये की जा रही है कि मियां नवाज आशी साहब वजारत उज़्मा हाल उठाने के बाद जब सऊदी अरब जाएंगे तो उन्हें वहाँ से डेफर पेमेंट पर या अतिया के तौर पर तेल मिलेगा साल के लिए या 6 महीने के लिए। अगर वो तेल मिलना शुरू हो गया तो फिर कुछ तवक्को की जा सकती है कि ये लोड शेडिंग का दौरानिया कुछ कम हो सकता है। ये लेकिन इन्हसार है सऊदी अरब पे कि वो कुछ बेल आउट पैकेज देते हैं इनको या नहीं देते, क्योंकि आम ख्याल ये है कि सऊदी अरब इनके साथ इनकी हुकूमत को कामयाब देखना चाहता है। तीसरा इशू जो है वो है सूबों और मरकज के दरमियान जो गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं, जो सूरत हाल बलूचिस्तान की है, जो सूरत हाल फाटा की है, जो सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा की है, कराची की है, सिंध की है। फिर एक वे ऑफ गवर्नेंस मियां नवाशी साहब ने खुद दिया है कि जब मरकज में जरदारी साहब की हुकूमत थी तो पंजाब हुकूमत बिलमूम अपोजिशन का किरदार अदा करती थी, यानी हुकूमत जो थी एक सूबाई हुकूमत विफाक के मुकाबले में अपोजिशन का किरदार अदा करती थी, एक पार्टी दूसरी पार्टी में नहीं करती थी। अगर खुदा ना खास्ता यही रवैया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने और सिंध की हुकूमत ने विफाक के साथ रवा रखा तो फिर विफाकी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। ये एक तीसरा मसला है जो इनको दरपेश है। और चौथा मसला है कि जो माजी का तजर्बा है मियां साहब का, क्या वो 12 अक्टूबर में उनका जहन फंसा हुआ है या वो आज़ाद हो चुके हैं, क्योंकि माजी में उनका मीडिया के साथ, अदलिया के साथ, फौज के साथ कोई अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रही। और अगर वो अब भी समझते हैं कि जी आज़ाद मीडिया, फाल अदलिया और एक ऐसी फौज जिसको जो माजी में अहम फैसले खुद करती रही है या कम अज़ कम असरअंदाज होती रही है वो उनके लिए नाकाबिल कबूल है, और वो आज ही पाकिस्तान को तुर्की या बरतानिया या अमरीका बनाने की ख्वाहिश करते हैं, तो इससे बहुत सारे तजादात पैदा होंगे। अगर इन चारों मसाइल को सही परस्पेक्टिव में एड्रेस करते हैं मियाँ साहब और इन पर अपनी उस्ताद तबा और अपने माजी के तजुर्बात से हटकर एक ऐसा मुफाहमना रवैया अख्तियार करते हैं कि मामलात भी ऐसा ऐसा बेहतरी की तरफ चले जाएं, कोई नया तजाद पैदा ना हो, कोई नई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो और मामला सही तरीके से चलें, थोड़ा सा रिलीफ अवाम को महसूस हो, ये एहसास हो कि पहली हुकूमत चली गई है, नई हुकूमत जो आई है वो अवाम दोस्त है, उनके लिए बेहतर है, तो यकीनन ये हुकूमत जो है कामयाबी की तरफ चल पड़ेगी।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊंगा।
किसी मरहले पर उन्होंने ऐसा ना किया तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा।
जी इशाद अली साहब, मैं फिर आ जाऊंगा। चलते हैं लंदन जहां पर मंजूर रजी साहब मौजूद है। मंजूर रजी साहब, आप देखें कि तालिबान के साथ मुजाकरात को संजीदगी से लेने की बात की है मियां नवाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने कहा है कि और जो उनके हामी हैं कहते हैं कि अगर मईशत को बेहतर बनाना हो, ये जाहिर एक कुल्ली बात है कि अगर मईशत को बेहतर बनाना है तो शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी पर काबू पाना होगा और तालिबान से मुजाकरात को हम संजीदगी से लेंगे। ड्रोन हमलों के ताल्लुक से अमरीका इंतखाबात के बाद कह चुका है कि हम ड्रोन हमले जारी रखेंगे और पॉलिसी में भी तब्दीली नहीं आएगी। जब अमरीका का ड्रोन हमला जारी रहेगा तो तालिबान से मुजाकरात कैसे हो सकेंगे या अगर हुए भी तो कैसे कामयाब हो सकेंगे?
के अर्ज ये है कि अब अमेरिका की पॉलिसी भी थोड़ी सी बदलती हुई नज़र आती है, और वो इस वजह से नहीं कि उनके दिल के अंदर कोई पाकिस्तानियों की मोहब्बत पैदा हो गई है या वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तानियों का इसमें कोई भला हो। बात यह है कि चूंकि अब वो निकलने की तैयारी कर रहे हैं वहाँ से, उन्होंने देख लिया कि 10-11 बरस के तशद्दुद के बाद, कत्लो गारत के बावजूद भी वो तालिबान की रूह जो थी ना, जिसे रूह तालिबान कहते हैं, वो ख़त्म नहीं कर सके। और उसके ख़त्म न करने की वजह यह है कि लोगों में तालिबान ने लोगों में ये तस्वुर उजागर कर दिया है कि अमेरिका जो है ये ज़ालिम है, बाहर से आए हैं और ये गासिब है। तो अब अमेरिका चाहता ये है कि उनको निकलने के लिए जिस हालात की ज़रूरत है वो उन हालात को पैदा करना चाहता है ताकि उसके पर हमले भी कम हो जाएँ, उसको निकलने में भी आसानी रहे, उसके तमाम जितने ज़राए नकलो हल्के ज़राए हैं उनको भी हिफाजत से पूरा कर दिया जाए। तो इस बात के लिए नवाज शरीफ साहब की उनको बहुत ज़रूरत है, और नवाज शरीफ साहब को अपनी बका और दवाम के लिए और अपनी हुकूमत चलाने के लिए, हुकूमत बाकी रखने के लिए अमेरिका की ज़रूरत है। ज़ाहिर है कि अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर और उनकी तवज्जो के बगैर पाकिस्तान में कोई हुकूमत कायम नहीं रह सकती। इसलिए अब ये जो डोल डाला गया है कि तालिबान से मुज़ाकरात किए जाएँ, तो दरअसल उसके पीछे सबसे बड़ी बात यही है, इसका मुहर्रिक ये है कि अमेरिका को आसानी से वहाँ निकलने दिया जाए जितनी हद तक वो वहाँ से निकलना चाहता है। देखिए कामिल इनकता का तो उसके इनखला का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये कभी भी नहीं हो सकेगा कि रातों रात अमेरिका जो है अपने तमाम मफादात को पसे पुश डालकर और अफगानिस्तान से चला जाए, क्योंकि उसके मफादात जो है वो सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि उसके लिए आजकल जो सबसे बड़ा मतमह नज़र उसका बना हुआ है वो ईरान पर बालादस्ती है, और इसी तरह वो चीन पर भी बालादस्ती रखना चाहता है। ज़ाहिर एक दूसरे जो इलाके हैं रशिया वगैरह है, रूस है, एक हद तक हिंदुस्तान है, सारी बातें असर में शम्स हैं कि अमेरिका जो है अपने मफादात के बाकी रखने के लिए वो इस इलाके को पूरी तरह तनहा नहीं छोड़ सकता। तो जहाँ तक आपने ये बात की है कि तालिबान से मुजाकरात किए जाएँ, उसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि अमेरिका के लिए आसानियाँ पैदा कर दी जाएँ, और चूंकि नवाज शरीफ साहब इस मकसद के लिए दूसरों की बनिस्बत वो कम तलख जुबान इस्तेमाल करते हैं, और वो भी इस वजह से कम तलख इस्तेमाल करते हैं उनको इशारा अमेरिका की तरफ से यही दिया गया है। और फिर दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ इस नुक्ते को जान चुके हैं, और ये नुक्ता इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि तालिबान कभी भी सऊदी अरब, कतर, कुवैत और खलीजी रियासतों की मदद के बगैर ना काम कर सकते थे ना कर सकते हैं, और उनका सारा दारोमदार जो है जहाँ तक उनके ज़राए और वसाइल का ताल्लुक है वो यकसर मोहताज है इन हुकूमतों के। इसलिए नवाज शरीफ साहब के चूँकि ताल्लुकात सऊदी अरब से बराह रास्त बहुत अच्छे हैं और उसी वजह से बिलवास्ता वो अमेरिका से भी बहुत अच्छे हो गए हैं, तो नवाज शरीफ को इसलिए दरमियान में लाया गया है चूँकि इनके ताल्लुकात सऊदी अरब से अच्छे हैं। अब सऊदी अरब ये नहीं चाहता कि खुलकर वो तालिबान से हाथ जोड़कर ये मुतालबा करे कि तुम हमारे आकाओं को वहाँ से निकलने की सारे ज़रा और वसाइल पहुँचाओ। तो बीच में जो रास्ता इख्तियार किया गया है ये एक उनकी सियासत का एक बहुत बड़ा कामयाबी का आप इसे मरहला कह दीजिए कि नवाज शरीफ को लाया इसलिए गया है कि जहाँ तक हो सके अमेरिका को वहाँ से बाइज्जत, निस्बतन बाइज्जत मैं कह रहा हूँ, वरना दुनिया पर ये अयां हो चुका है और अब अयां रचे बयां कि अमेरिका बहादुर जो है वहाँ से वो फौजी तौर पर नाकाम होकर जा रहे हैं। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब का अब काम सिर्फ इतना रह गया है, देखिए, और इसी मसले को इतना उजागर कर दिया गया है, इसको नत्थी कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है कि पाकिस्तान की बका जो है वो तालिबान की मर्जी पर मुनहसर कर दी गई है। इतना सितम आपने कभी देखा होगा किसी मुल्क में? ठीक है, तीसरी दुनिया में कई ममालिक जो हैं अपनी खाना जंगी की वजह से तबाह बर्बाद हो रहे हैं और हुए हैं, लेकिन ये कहीं भी नहीं हुआ कि एक मुट्ठी भर चंद लोग जो हैं वो किसी मुल्क की बका और सलामती के वो जो हैं वो जिम्मेदार ठहराए जाएं और उन पर ये मौकूफ़ हो, अगर वो चाहें तो पाकिस्तान बाकी रहे, अगर चाहें तो पाकिस्तान में अमन अमान हो, अगर चाहें तो पाकिस्तान में खलफशार रहे, अगर चाहें तो पाकिस्तान में हुकूमतें बदलती रहें, अगर चाहें तो पाकिस्तान को इक्तसादी तौर पर बर्बाद और तबाह कर दिया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को उनका चूँकि उसको इल्म है, आपने देखा होगा निस्बतन अभी हाल में जहाँ नवाज का ताल्लुक था, नवाज लीग के मुतालिक ये ख्याल था कि शायद उनके लिए अच्छी सीटें मुहैया हो जाएगी, वहाँ निस्बतन कम हमले हुए हैं और इस वजह से हुए हैं ताकि तालिबान के दिल में नवाज शरीफ साहब के लिए नरम गोशा पैदा किया जाए। और इसके मकसद, इसके पीछे सिर्फ एक ही बात है कि तालिबान की मर्जी के बगैर ये तासुर दे दिया जा रहा है कि देखिए पाकिस्तान के मसाइल उस वक्त हल हो सकते हैं जबकि तालिबान हमसे राजी हो जाए, यानी पाकिस्तान की इक्तसादी कैफियत हो, अस्करी हो, फौजी हो, माशी हो, माशरती हो, अमन व अमान का मसला हो, इन सब का गहवारा और इन सब का मरकज, इन सब का महवर जो है वो तालिबान को ठहरा दिया गया है। अब पाकिस्तान की जान जो है उनके पंजे में आ चुकी है, इस सारा पाकिस्तान का
मंजूर साहब के
हयात जो है उनकी मर्जी पर मुनसर है और यही कोशिशें की जा रही है।
बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब। अभी आपने अपने गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने के बाद सऊदी अरब जाएंगे तो वहाँ से कुछ अतियात लेकर आएंगे, तो सऊदी गवर्नमेंट नवाज शरीफ फैमिली की हमदर्दी में ऐसा कर रही है या पाकिस्तान के अवाम की हमदर्दी में कर रही है? और अगर पाकिस्तान के अवाम की हमदर्दी में कर रही है तो 11 मई से पहले भी पाकिस्तान के अवाम थे और इन्हीं परेशानियों में थे, और अब अगर अब कर रही है तो उसके पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है आपके ख्याल में? بظاہر ٹیلیفونی رابطہ منقطع ہے. عمر ریاض عباسی صاحب، اگر آپ نے میرا یہ سوال سنا جو کہ میں نے ارشاد عارف صاحب سے کیا، تو جواب عنایت فرمائیں.
بڑا گہرا سوال ہے آپ کا، میں نے سن لیا ہے، اور میرے خیال میں پاکستان کے عوام، آپ نے جواب دے دیا، 11 مئی سے پہلے بھی پاکستانی عوام ادھر ہی تھے، اب سعودی عربیہ کو اتنی ہمدردی کہاں سے آ گئی؟ تو اس پہ مجھے ایک شعر یاد آ جاتا ہے اس ہمدردی پہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو. حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، نگاہ زہر پہ رکھ خوش نما بدن پہ نہ جا. ایک جواب تو اس کا یہ ہے جو سمجھ آ جانا چاہیے. تو میرے خیال میں سعودی عرب کی دوستی وہ خیر خواہی نہیں ہے پاکستان کے لیے. اس سے پہلے فلڈ وکٹمز بھی رہے ہم، ڈیزاسٹر بھی آتے رہے، ارتھ کویک بھی آیا، تو ساری دنیا جانتی ہے کہ دیگر ممالک نے بشمول ایران ہماری بڑی اچھی سپورٹ کی اور بہت ساری مواقع پہ ہمارا ساتھ دیا، فرینڈشپ کا ثبوت دیا، چائنا نے، ایران نے، دیگر ملکوں نے، ایون ترکی نے، لیکن سعودی عربیہ اس حد تک گرم جوشی سے آگے نہیں آیا. یہ شریف فیملی کی سپورٹ ہے اور شریف فیملی کی سپورٹ نہیں ہے. میری اطلاعات کے مطابق یہ بھی امریکہ اور سی آئی اے کے کہنے پہ کہ آپ تھوڑی سی ہڈی دیں اور دے کے اپنا مقصد پورا ہو واپس کھینچ لیں. اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ڈیڈ نہ کرو بلکہ تھوڑا سا اسے جینے دو اور یہ تڑپتا رہے اور اس کی امید باقی رہے کہ کچھ اور ملے گا. تو یہ چل چلا ہوا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر، یہ چلتا ہے. انہوں نے اپنا ایک پاپیٹ اور اعلی کار رکھا ہے سعودی عربیہ امریکہ نے، تو وہ اسلامی ممالک میں سے جہاں ان کی ہم نوا گورنمنٹس ہیں، جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، بادشاہتیں ہیں، وہ سعودی عرب جو ہے اس کو انہوں نے تھانے دار بنایا ہوا ہے. تو باقی چوکیاں ہیں، چوکی جیسے قطر کی چوکی ہے، اسی طرح جیسے پاکستان کی چوکی ہے، اسی طرح دیگر بعض خلیجی ریاستوں کی چوکی ہیں، تو یہ چوکیوں پہ ان کے محرر بیٹھے ہوئے ہیں سمجھیں. وہ محرر وہی لکھے گا کہ جو اس کا تھانے دار کہے گا، اور تھانے دار شاہ عبداللہ ہے، اور شاہ عبداللہ کے اوپر جو اس کا ایس ایچ او ہے وہ امریکہ ہے، واشنگٹن بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ٹرائیکا چلا رہا ہے، میں عرصے سے پیٹ رہا ہوں، لوگ سمجھ نہیں پا رہے، یا جان بوجھ کے بیان نہیں کرتے، یا انہیں کوئی مفادات آڑے ہوتے ہیں. ہم تو اسٹریٹ فارورڈ جو ہمارا تھیسز ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا اکثر باتیں وہی ہوتی ہیں، وہ پبلک کی اویئرنیس کے لیے بھی وہی ہوتی ہیں، بیداری شعور کے لیے بھی وہی ہوتی ہیں. جب تک سعودی عربیہ، امریکہ، سی آئی اے اور موساد کے اس چین کو نہیں توڑا جاتا، پوری دنیا میں امن نہیں آئے گا. خدا کے لیے یہ حکومتیں ان کے رحم و کرم پہ مت چھوڑیں. ابھی کیا ہو رہا ہے، مجھے ایک بات کرنے دیں اگر آپ اجازت دیں
جی.
وہ ایشو سے ہٹ کے نہیں ہے، ایشو سے ریلیٹڈ ہے. مجھے بتائیں، شام میں مسلمان نہیں رہتے؟ کسی ملک کی داخلی خود مختاری کا حق اس ملک کے پاس ہے یا سعودی عرب اور امریکہ کے پاس ہے؟ میں اس دن دیکھ رہا تھا حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش، وہ جو دکھائی گئی، وہ مزار شہید کیا گیا. حجر بن عدی کون تھے؟ آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، اہل بیت کے، مولا کائنات کے ماننے والے تھے. آپ کو کس نے شہید کیا، کیسے شہید کروایا؟ آج ان کے جنازے کو، ان کے جسد اقدس کو باہر نکالا گیا، اور وہاں پہ وہ وہابی سکول آف تھاٹ کے ماننے والے خوشیاں منا رہے. اب اس پہ کوئی نہیں بول رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ گریٹر گیم ہے، وہاں پہ سیریا کو توڑنا ہے. اگر شام میں امن آئے گا تو مسئلہ فلسطین کو تقویت پہنچے گی. شام میں امن نہیں قائم ہونے دینا. شام میں امن قائم ہوگا تو لبنان مضبوط ہوگا. لبنان مضبوط ہوگا تو فلسطین مضبوط ہوگا. فلسطین مضبوط ہوا تو ایران، فلسطین، شام، یہ ریاستیں، یہ راہداری بنے گی. پھر پاکستان، افغانستان، ترکی، یہ ٹریڈ زون بن جائے گا، اسلامک بلاک بن جائے گا، اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. اس کو خراب کرنے کے لیے امریکہ جو ہے اپنے پپٹس چھوڑتا ہے، اور انہی میں سے ایک دانہ جناب نواز شریف صاحب کو شاید مل جائے، پیش کر دیا جائے ان کی، چونکہ وہاں پہ ملے بھی ہیں. لیکن ان دا لانگ رن سعودی عرب کی یہ فنڈنگ ہمارے مفاد میں نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں بین ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں آدھی دہشت گردی سعودی عربیہ کے شہزادوں کے فنڈ ہیں جو یہاں مدارس کو دیتے ہیں، ایک طرف امریکہ کے ساتھ بیٹھے. کبھی ان امریکنز کو بھی بندہ بتائے کہ ان سعودیوں کا دورہ معیار کیا ہے، کہ ایک طرف پاکستان میں دہشت گردوں کو فنڈ دیتے اور ایک طرف آپ کے ساتھ الائنس ہیں. مجھے ان کے ایمان کی سمجھ نہیں آتی. امریکہ تو ہمارا کھلا دشمن ہے، ان کے ایمان کی سمجھ آ جاتی ہے.
چند سیکنڈ میں ایک سوال کا جواب آپ سے چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو دھاندلی کے خلاف احتجاج اور دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے، کتنا ثمر بخش ہوگا ان کے حساب سے، اور اپنے مطالبات کتنا منوا سکیں گے؟ 15 سیکنڈ کے اندر جواب چاہوں گا.
دیکھیں، خان صاحب کے دھاندلی کے جو الزامات ہیں، اگر ان کے دھرنے کے اندر لوگ آئے، ایلیٹ کلاس آ رہی ہے، اگر لوگ جم کے بیٹھے رہے، تو ہو سکتا ہے 5-7 حلقوں میں ری کاؤنٹنگ ہو جائے. لیکن جو کچھ ہونا تھا، اسکرپٹ لکھا جانا تھا، اب وہ بائی پاس نہیں ہو سکتا. وہ مقدر ہے اس قوم کا، وہ لکھا جا چکا ہے. وہ قبلہ واشنگٹن وہی رہے گا جیسے پہلے تھا. مدینہ و نجف بننے میں ابھی ہنوز دلی دورست.
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو، ان کے تبصرے، ان کے تجزیے ملاحظہ فرمائے. بہرحال پاکستان میں حکومت سازی کا عمل تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور آئندہ جو حکومت آئے گی اس کی کارکردگی آپ سب کے پیش نظر ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسی جی اور دیگر ساتھیوں کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.